نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم مفتاح القران میں سے سبق نمبر 29 پیج نمبر ہے 88 اذن تین ملتی جلتی آوازیں ہیں ہم دیکھیں گے کہ یہ علامتیں کہاں آتی ہیں پہلے تو ایک ہلکا سا شعور بیدار کرنا چاہوں گی کہ ہم میں سے اگر کسی کی تجویز ٹھیک نہیں ہے اکثر آپ دیکھیں کہ بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جھٹکے دے دے کے پڑھتے ہیں نا اس کہیں لکھا ہوا ہے اس قال ربک للملائکہ تو وہ کہیں اس قال ربک تو وہ اس جو ہے وہ اس ہو گیا نا تو آپ دیکھیں کہ اس اور اذا اور اذن میں بہت تھوڑا سا فرق ہے صرف شعور کو بیدار کرنے والی چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ تجوید غلط ہو جاتی ہے جب قرآن کی پروناؤنسیشن رونگ ہو جاتی ہے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اور اذا یہ دونوں علامتیں کہاں آتی ہیں ان دونوں علامتوں کا ترجمہ جب اور جس وقت یعنی کبھی کبھی یہ جب کے معنوں میں اس قال ربو کا جب کہا تیرے رب نے یا پھر جس وقت ہوتا ہے اس عموماً گزرے ہوئے زمانے کے لیے اور اذا عموماً سے مراد ہے کہ عام طور پہ یوزلی آئندہ زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے فرق نوٹ کیجئے گا اس اور اذا کو اکٹھا لے رہے ہیں دونوں میں جس یا جب کا معنی آتا ہے اس عموماً کیوں کہا گیا کہ 100% ایسا نہیں ہوتا عربی زبان کے بارے میں یہ ایک معروف جملہ ہے کہ اس میں کوئی بات بھی 100% نہیں ہوتی ہر رول کا کچھ نہ کچھ ایگزمپشن ضرور ہے ایگزمپٹ ہو جاتا ہے تو اسی طرح یہاں بھی ہے اب آپ کہیں کہ آپ نے تو اس کا ترجمہ ماضی کا کیا تھا لیکن کسی جگہ دوسری طرح آ جاتا ہے حال میں اور مستقبل میں تو کبھی کبھی اس چیز کی استثنا بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت 54 ہے اس قال موسیٰ لقومہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کیا سمجھ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ کوئی واقعہ ہے آپ اب اپنے سمجھ کے لیے لکھیے ذرا اپنے اس نوٹس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر لکھ لیں کہ اذ اصل میں اذکرو تھا اذکرو کا کیا معنی ہے یاد کرو ریممبر ریکال تو کس چیز کو یاد کرتے ہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو قرآن میں چیزوں کے اندر اختصار پایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سمری ہم قرآن کا خلاصہ کر رہے ہیں نا وہ کیا ہے کہ ہم کنسائز کر رہے ہیں نچوڑ نکال رہے ہیں تھوڑا کنسنٹریٹ جو ہوتا ہے آپ گھر میں ٹینک کے نام کا کنسنٹریٹ لے آتے ہیں کیا ہے جی آپ دو چمچ اس کے پاؤڈر کی ڈالتے ہیں تو وہ جوس تیار ہو جاتا ہے تو کنسنٹریٹ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی جگہ میں زیادہ چیز سما جاتی ہے نا تو قرآن پاک میں اتنی وسعت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا کہ اس میں چیزوں کو سکویز کیا گیا نچوڑا گیا ہے مثال دیتی ہوں جیسے ابھی ہم آیت پڑھتے ہیں کہ اس قال ربک للملائکہ تھی اب وہ اس قال ربک کو لکھ کر اس کی جگہ اذکرو کرے تو آپ کے اوپر بوجھ پڑے گا واذکرو قال ربک للملائکہ تھی ٹھیک ہے تو اذکرو کو اس کر دیا جاتا ہے اور وہی اصل میں پھر اذا بھی بن جاتا ہے حضرت موسیٰ کی قوم کا جو واقعہ تھا ماضی میں ہو چکا اس لیے یہاں اذ آ گیا اسی طرح دوسرا واقعہ بھی بنی اسرائیل کا ہے سورہ بقرہ کی آیت 49 ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ اور جب ہم نے تم کو فرعون کے لشکر سے نجات دی ٹھیک ہے تو گویا کہ یہ ایسے ہے میں آپ کو اب آیت پہ نظر جمائیے گا میں پڑھ کے بتاتی ہوں کہ اصل معنی کیا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ بات واضح وَاذْكُرُوا إِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ پھر وہ ہٹ جائے گا تو اس سے پہلے اذکرو آ جائے گا پھر اگلی مثال سورۃ نازعات کی آیت نمبر 16 ہے اس نادا ہو رب ہو بال واد المقدس توا جب اسے اس کے رب نے پکارا مقدس وادی توا میں ابھی تک دیکھیں جتنی مثالیں آ رہی ہیں یہ ساری بنی اسرائیل کے اس لیے یہاں آپ اس اور اضاء کے ساتھ ایک اپنی یاد دہانی کے لیے ایک اور ریمائنڈر لکھ لیجئے کہ یہ لفظ ہمیشہ کسی واقعے کے ساتھ آتا ہے سٹوری ہوتی ہے پیچھے قصہ ہسٹری ہوتی ہے اس میں مثلاً موسیٰ نے کب کہا اپنی قوم کو جب قوم نے پانی مانگا کب ہم نے فرعون سے نجات دی ان کو جب انہوں نے کوشش کی اسی طرح اگلا واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کے پاس کھڑے ہونے کا تو اس میں عموماً واقعہ پایا جاتا ہے لیکن ایک ایکسیپشن بھی ہے جو کہ آگے آ رہی ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को टेढ़ा मत कर। इसके बाद जब तूने हमें हिदायत दे दी और अपनी तरफ से हम पर रहमत नाजिल फरमा। यहाँ आप देख रहे हैं कि जब का मानी आ रहा है, लेकिन इसके अंदर वाक्या नहीं है। मुराद ये है कि अल्लाह ताला जब आप एक काम कर चुके, हमें हिदायत दे दी, आपने हमें खूबसूरत रास्ता दिखा दिया, आप अगर आप हमें हिदायत से दूर करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत तकलीफ़ की बात होगी। तो लिहाजा अभी तक जितनी मिसालें थी ये इसकी थी। अब हम आगे देखेंगे ईज़ा की मिसाल। और यहाँ आप देखिए कि ये जो आखिरी मिसाल है, इसके अलावा बाकी तीनों मिसालों में नंबर एक वाक़या है। दूसरी बात आप देखिए कि पिछली तीन मिसालें जो है ना, उसमें माजी है, जैसे कि अभी हमने इसके साथ देखा। लेकिन जो आखिरी दुआ है बाद इस हदायत ना, इसमें माजी नहीं है, कंटिन्यूटी है। अभी भी अल्लाह ताला आपने हमें हिदायत दी हुई है। इंग्लिश में एक टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, कुछ उस किस्म की सेंस है कि अल्लाह आपने हमें दी थी और अभी भी दी हुई है, तो प्लीज़ आप हमें ना रोकें। असल में आगे अगर आप थोड़ा सा देखें, हदायत ना जो है ना, ये माजी है, पास्ट है, ठीक है। अब पास से पहले इस लग गया है तो माजी के अंदर कंटिन्यूटी पाई जा रही है, ये मानी है। वही बिल्कुल जिनको इंग्लिश का पास कंटिन्यूस टेंस आता है, तो इधर एक छोटा सा और भी असूल समझ आता है कि माजी का सीगा हो कोई भी, उससे पहले जब इज लग जाता है तो उसमें कंटिन्यूटी पाई जाती है। कितनों को ये बात समझ आई है? अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखते हैं अब इज़ा की मिसालें। सूरह तकवीर आयत नंबर 13, व इज़ल जन्नत उज़लिफ़त, और जब जन्नत करीब कर दी जाएगी। अब ये फ्यूचर में होना है ना, तो इज़ा आ गया। फिर इसी तरह वैज़ल जिबाल सुज़िरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। सूरह तकवीर ही की आयत 3 है और तकवीर ही की आयत 5 है। वैज़ल वुहूश हुशिरत, और जब वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएंगे। सूरह ज़िलज़ाल की पहली आयत है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन को हला दिया जाएगा अपनी पूरी शिद्दत के साथ। तो ये सारे वाक़यात कौन से होंगे? क़यामत के होंगे, ठीक है। तो ये फ्यूचर की बातें हैं, तो यहाँ अमूमन ईज़ा आ गया। अच्छा, आप ज़रा इसको पढ़ के देखिए, एक हमेशा ना खेला करें, गौर फिक्र किया करें। अच्छा, वहाँ ईज़ आया है, तो मैं ज़रा ईज़ा को इसमें बदल के देखती हूँ। बस आप देखिए, व इज़ अल जन्नत, पढ़ा नहीं जा रहा ना, आप कॉमन चीज़ देखिए ज़रा, इज़ और ईज़ा के आने में। ज़रा दोनों मिसालों को सामने रख के मुझे बता सकते हैं आप लोग, क्या फ़र्क दिख रहा है? पहली मिसाल है व इज़ काला, ठीक है, और इधर है व इज़ल जन्नतु। जी शाबाश, हाथ खड़ा करें। फ़र्क क्या है? जी शाबाश, इस के बाद फेल आ रहे हैं। इस कौला, इस नजैना, इस नादा, इस हदैतना, वज़े फेल है, माजी है या मुस्तकबिल है उसको छोड़ दें अभी। जबकि इज़ा के बाद सारे इस मारे, और कौन से इस मारे? जी इसम मारिफा आ रहे हैं, अल के साथ आ रहे हैं, ठीक है। आखिरी मिसाल जो है ना, इसमें हमारे पास सूरह ज़िलज़ाल के आयत 1, ये ओनली मिसाल हमारी इन मिसालों में है कि इज़ा के बाद फेल आ रहा है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, बात वाज़े? तो ये छोटे छोटे फ़र्क नोट किया करें। तीसरी अलामत देखिए, इज़न, अब ज़ाहिर इनमें थोड़ा सा फ़र्क होगा ना। ये अलामत किसी नतीजे को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर एक, इसका तर्जमा उस वक्त या तब किया जाता है, जैसे आप कहते हैं ना, अगर तुम सर्दी में गए तब तुम्हें सर्दी लग जाएगी या बुखार हो जाएगा, अगर तुमने ठंडा पानी पिया तो तुम्हारा गला ख़राब होगा। तो ठंडा पानी पीने के नतीजे में गला ख़राब हुआ ना, ये होता है नतीजा। कि इज़ा में कुछ ऐसी कैफियत पाई जाती है कि अगर आप कोई काम करेंगे तो उसके नतीजे में आपके साथ भी वैसा मामला होगा। मसलन सूरह निसा की आयत 140 है, इन्नकुम इज़म मिसलुहुम, बेशक तुम उस वक्त उन जैसे हो जाओगे। किसी को याद है ये कहाँ आई आयत, पीछे क्या चल रहा है इसके? अब इतना फहम खुला कि नहीं? जी
जी, से कहा गया है कि जब अगर आप उनकी बात मानेंगे तो
जी। आयत तो सूरह निसा की 140 लिखी है, आप इसके लिए अपने लिए एक्टिविटी लिखें बाद में। ये जितनी भी आयतें आपको यहाँ मिसाल में आ रही हैं ना, इनका नंबर देख के कुरान पाक से देखें इनके पीछे क्या है। मैं तो आपको भी बता रही हूँ ना, असल में ये आए और मेरे सामने कई आयतें और आप खोलें और इंशाल्लाह मुझे 98% यकीन है, 99% यकीन है कि यही है, कि जब तुम किसी ऐसी महफिल में हो जहां अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया जाए, अल्लाह के दीन से खेल मजाक हो, तो उठ जाओ। अगर नहीं उठोगे इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, वरना तुम भी वैसे ही हो। इसी तरह आप देखिए सूरह बनी इसराइल 73, व इज़ल लत्तखज़ूका खलीला, और उस वक्त वो आपको ज़रूर दोस्त बना लेंगे। इसके पीछे क्या है? अपने जहन को इनमें इतना उलझा दें कि आपको गम भूल जाएं, बीमारियां भूल जाएं, परेशानियां भूल जाएं। इतना खेला करें, अच्छा मैं देखती हूँ भला इसमें क्या है। अच्छा अब मैंने कहा ना आपको कि अच्छा जी आप इसके पीछे वाली चीज़ें ढूंढें, आपके अपने दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि अच्छा मैं घर जाके ना ये मिसालें देखूंगी कि इनके पीछे क्या आता है। इससे फिर आपका ना इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब तक हमारा किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता ना, हम उस काम को कभी भी खूबसूरत तरीके से नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की बातें यहाँ कर रहे हैं कि अगर आप इनके कहने पे अपने दीन को बदल लें, इनकी मर्जियों को मान लें, ये वो कर लें, तो फिर ये आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। फिर इसी तरह आप देखिए कि सूरत अल-कहफ की आयत 57 है, फलैन यहतदू इज़न अबदा, बस तब वो हरगिज नहीं हिदायत पाएंगे कभी भी। ठीक है, अगर उन्होंने ऐसे काम कर लिए जो सब कर रहे हैं, उसी रंग में ये भी रंगेंगे, तो ये उनको हिदायत वाले नहीं बनेंगे ये। अब आप देखिए कि इनके ऊपर हम थोड़ा सा गौर करते हैं। पढ़ तो ली, याद कैसे करना है? ये अलामत किसी नतीजे को जाहिर करती है। ठीक है, ये हमने पहली टिप देखी है ना। अब देखिए इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, क्या नतीजे? अगर आप वहाँ बैठे रहे तो नतीजे में आप भी वैसे हो जाएंगे। जिस तरह का मफहूम एक हदीस में भी है ना कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हुम, जो किसी कौम की मुमासलत करेगा, तशबीह करेगा उनके इख्तियार, वो नहीं जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ किस चीज़ का नतीजा? गलत चीज़ देखकर वहाँ खामोशी से बैठे रहना आपको भी नतीजे के तौर पे वैसे ही कर देगा। एक तो अल्लाह की नज़रों में बंदा वैसा हो जाएगा ना, दूसरा इसमें ये होता है कि आपको वो चीज़ भी बुरी नहीं लगेगी। जब एक बंदा किसी बुराई को इतने करीब से देख लेता है ना, तो कहते हैं हाँ कोई हर्ज तो नहीं है। मिसाल है कि हम कहते हैं शराब बहुत बुरी चीज़ है, सोच के भी हमारी भवें तनती हैं, लेकिन अगर हम दिन रात किसी को अपने सामने पीते बैठते देखें तो हम कहेंगे इतनी बुरी तो नहीं है। ये बहुत बड़ा शैतान का एक हथियार है, वो डिफेंसिव कर देता है। जिस चीज़ को हम गलत समझें ना, इसलिए इस्लाम कहते हैं पीछे रहो पीछे रहो पीछे रहो पीछे रहो, क्योंकि जब तुम उसमें कूद पड़े तुम भी वैसे हो जाओगे, तुम्हारी सोच ही बदल जाएगी, तुम्हारा फ्रेम ऑफ माइंड बदल जाएगा। फिर लोग कहेंगे हरज क्या है, आपको इसमें गलत क्या दिखता है? 101 चीज़ें कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको गलत दिख सकती हैं, लेकिन वहाँ बैठे हुए उस माहौल का हिस्सा बने हुए लोग उसको बिल्कुल फील नहीं करते। और अगर कोई कहेगा तो कहेंगे जी के ये जेलस है, ये हसद करता है, और ये बहुत पिकी है, और ये दीन के नाम पे बहुत स्ट्रिक्ट है। बात वाजे? आप किसी मेहंदी उपटन रस्म में आप जाके देखें ज़रा, जो कुछ लोग नॉनसेंस किस्म के काम कर रहे होते हैं, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ, पूरा कुरान आप पढ़ चुके हैं, आप एडवांस कोर्स में भी आ जाए, आप वहाँ जाके अगर एक जुमा एक घर दूसरे जुमा आपको बुरा नहीं लगेगा। कहे चलो बच्चे बच्चियाँ खेल रहे हैं, वो पीला जोड़ा ये फूलों के गजरे ही पहना दिए, नाच कूद लिया ना। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं जाएंगे, अपने आप को दूर रखेंगे ना, फिर आप सोच में पड़ जाएंगे, कहेंगे नहीं ये तो बहुत बुरी बात है। वो कहें क्या बुराई है, फिर आप उसको टैली कर सकते हैं कि भाई ये सुन्नत में नहीं, ये तो दिस एंड दैट है। तो नतीजा यहाँ क्या निकल रहा है कि तुम ऐसी चीज़ के करीब ना बैठो। फिर अगली चीज़ देखिए, वह इज़लतखज़ू का खलीला, यानी अगर आप इनके कहने पे कुरान के अंदर चेंजेस कर देंगे, आप इनकी बातों को मान लेंगे, जो बातें ये करवाना चाहते हैं या इनकी मनपसंद बोली आप भी बोलेंगे, तो ये आपसे बहुत खुश होंगे। मतलब क्या है कि इनको खुश करने का एक ही तरीका है, और वो क्या है कि आप इनके साथ इनकी मर्जी की बातें रखें, जो चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं वो आप करें, और जो बातें इनको अच्छी नहीं लगती वो आप उनको छोड़ दीजिए, और इस तरीके से फिर ये आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो किस्सा मुख्तसर जो बात का ख़ुलासा है वो क्या है कि इज़न में नतीजा पाया जाता है, कि जिसमें इंसान कुछ करने के बाद उससे रेलेवेंट फिर उसके ऊपर उसका कुछ असर आता है। बात वाज़े? कौन दोहराई कराएगा इन तीनों अलामतों की? जी फायज़ा, शाबाश।
और इज़न ये किसी इसमें कोई नतीजा पाया जाता है, और इसका तर्जुमा तब उस वक्त या तब किया जाता
है। जी, यानी आप इसे ऐसे इसको रिकैप क्या करें, आंखें बंद करके ना, पहले इज़ इज़ा, इज़ क्या है? पहली बात है माजी है, वक्त आता है, किस्सा कोई होगा इसमें, अपने माइंड को खुद वापस लाए। लिखे हुए को हम सिर्फ देख के बोलते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा फिर हम सोच भी नहीं रहे होते, सिर्फ बस हम डिक्टेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप खुद सोच रहे थे कि मुझे इसमें से क्या समझ आया, तो इंशाल्लाह ताला आप उससे फील करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बात वाज़े, अब आपने इनकी कम से कम दो दो, और ज़्यादा की तो कोई हद नहीं है, ये मिसालें खुद ढूंढ के लिखनी है। ठीक है, देखिए आपको मैं इसका थोड़ा सा टिप्स बताऊँ कैसे ढूंढा करें। मतलब आप देखिए कि अब आप लोगों ने कुरान तो पढ़ा हुआ है ना, कई लोग इस बुक से जो फ़ायदा बाद में उठाएंगे उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। आप जहन में सोचा करें, मैं आपको सिर्फ एक सोचने का स्टाइल बताती हूँ कि आपको यहाँ कोई तस्निया यानी दो लोगों की मिसालें ढूंढनी है ना, कि जिसमें आपको दो लोगों की बात है। आँखें बंद करें, सोचें कुरान में कहाँ कोई वाक्य ऐसा है कि जिसमें अक्सर दो लोगों का जिक्र है। अच्छा, कोई ऐसा वाक्या है कि जिसमें ज़्यादा मिसालें ड्यूल की आएंगी ना, तो फिर मैं सोचूंगी ना, तो मेरे जहन में सबसे पहले तो मेरे जहन में मूसा और खजर का किस्सा आएगा, इज़िन तलाका करबा चला गा चले गए। फिर इसी तरह मेरे जहन में आएगा, अच्छा आदम और इबलीस का भी किस्सा दो का है, आदम और हवा का दो का है। फिर मेरे जहन में सूरत अर्रहमान आ जाएगी कि हाँ अल्लाह ने उसमें भी जिन्नों और इंसानों दो ग्रोहों को मुखातिब किया। ठीक है, तो मैं इस तरह से सोचना शुरू कर दूँगी। अब यहाँ हमारे पास मिसाल है इस की ना, इस उसक्रू ये, तो मैं फ़ौरन सोचूंगी कुरान में कहाँ कहाँ कहानी है। और मैं आपको इसका इतना आसान तरीका जो मैं बताना नहीं चाहती, वरना तो आपका सारा मेहनत ही ख़त्म हो। यकीन करें आप लोग जितनी मुश्किल से करेंगे ना कि पढ़े हुए कुरान, और मैं यहाँ किसी ऐसी बच्ची को जिसको एक लफ्ज़ नहीं आता इल्ला बिल्ला कुरान का, उसको कहो ना कुरान में पूरा इस कितनी दफ़ा आया है, वो 101 दफ़ा का मेरे सामने लिस्ट ला देगी। मुझे भी पता है लेकिन मैं आपको नहीं बताना चाहती, इसलिए कि फिर आप तो दिमाग ही नहीं इस्तेमाल करेंगे। आपने भी सुना है, अब वो आप उस तरीके की खोज में ना रहें, खुद ढूंढें, फिर ही तो आपको समझ आएगा ना। खुद करें, रिसर्च वर्क किसी का नाम होता है, सोच इसी से तो फिर आपका फहम होगा। मैं आपको टिप एक और दे देती हूँ, क्या करें आप अपनी डेली रूटीन में कुरान पढ़ें ना, कोई सूरह मुल्क शुरू कर लें। मिसाल है आप रात के होमवर्क करने बैठिए ना, तो आपके अलावा मैंने सूरह मुल्क तो पढ़नी है ना, तो पढ़ो लेकिन शऊर के साथ पढ़ें कि उसमें कहीं इज़ा उज़कुरु आए, वो पढ़ लीजिए जितने उसमें मिले। और यकीन करें कुरान इतना बड़ा मौजज़ा है कि आप जो चीज़ जहन में रख के करते हैं ना आपको वो मिल जाती है। फिर आपके चलो सूरह सजदा भी पढ़नी है, वो पढ़ लेती हूँ, मैं उसमें से ढूंढती हूँ। जुमे का दिन है, आपके चलो मैं सूरह कहफ में से मिसालें ढूंढ लेती हूँ। फिर इसी तरह बाज़ दफ़ा आपका अपना जो सबक होता है यहाँ, जो रुब आपका यहाँ चल रहा है, उसमें से ढूंढ लें। अपनी रूटीन में पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, आप फील करेंगे कि आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये सब करके मिसालें ना ढूंढ पाना बेहतर है कि आप कोशिश ही ना करें कि जी मुझे तो आता ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती। ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।